उसके बाद ठीक है जजाकुमुल्लाह, शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्यौमा अहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात व तअआमु अल्लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुन लकुम व तअआमुकुम हिल्लुन लहुम والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، معرف القرآن جلد نمبر 3 سے آیت نمبر 5 کے اوپر ہی ہم ہیں، اور اس کے معرف مسائل چل رہے ہیں کافی عرصے سے. تو اس میں جو پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آج کے دن یعنی ذی الحجہ کی جو 8ویں تاریخ تھی، نہیں 8ویں نہیں سوری 10ویں تاریخ، کیا کر رہا ہوں میں، نہیں جو یوم عرفہ تھا نا، تو اسی دن نا الیوم احل لکم الطیبات، اس دن یہ الیوم اکملت لکم دینکم والی بھی آیات نازل ہوئی، یہ والی آیت بھی نازل ہوئی کہ آج جو ہے وہ تمہارے لیے ہم نے ستھری چیزیں حلال ہو گئیں کر دی. فطعام الذین اوت الکتاب حل لکم، اور جو کتاب دیے گئے تو ان کے کھانے کو تمہارے لیے حلال کر دیا اور تمہارے کھانے کو ان کے لیے حلال کر دیا. ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم پریٹی مچ کھانے ہی کی ساری بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کھانا کتنا اہم چیز ہے کہ اسی کے اوپر جو ہے نا وہ آیت کا تو ایک خالی چھوٹا سا حصہ تھا، لیکن اس کے اوپر کتنی لمبی بات چیت چل رہی ہے. کل ہی ہمارے ایک دوست ملے جنہوں نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ بڑا کمپٹیشن. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیسا چل رہا ہے آپ کا کاروبار، تو کہنے لگے بڑا کمپٹیشن ہے، بڑا کمپٹیشن ہے. تو بہت لوگ ریسٹورینٹس کھول رہے ہیں، ہر جگہ ریسٹورینٹس کھول رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی ظاہر ہے ڈیمانڈ ہے تو سپلائی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو کھانے والے ہیں، کھانے کی ڈیمانڈ ہے تو اسی وجہ سے تو سپلائی ہے، کہ یعنی ریسٹورینٹس کھول رہے ہیں اور ایک سے ایک جو ہے وہ کھانے ان کے اندر سپلائی ہو رہے ہیں. اس پہ کہنے لگے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا کہہ کر کے ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے. اب الحمدللہ کم از کم سعودی عرب کے اندر اب تک یہ تو نہیں سنا کہ گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے وغیرہ، یہ تو نہیں، لیکن ان کے حساب سے اجینوں وہ تو کھلانا ہی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی ایک فوڈ ٹیسٹ انہانسر ہے، لیکن غالباً وہ جواز کا فتویٰ نہیں ہے اس کے اوپر. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے نا. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے جیتے ہیں یا جینے کے لیے کھاتے ہیں، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تفسیر میں جو پڑھ رہے تھے، ہم پہنچے تھے پیج نمبر 54 کے اوپر، اور اس میں ہم نے ایک اور پڑھ لیا تھا کہ جمہور صحابہ و تابعین کا کیا مذہب ہے، کہ اگر کوئی عیسائی جہالت اپنے دین کے بارے میں جاہل ہے، اپنے آپ کو عیسائی تو کہتا ہے لیکن وہ اللہ کا نام لینے کی بجائے کسی اور کا نام لے لیتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیتا ہے، یا یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کا نام لے لیتا ہے، یا جان بوجھ کر کے نام چھوڑ دیتا ہے، بلکہ نہیں جان بوجھ کا نام چھوڑنے والا مسئلہ نہیں تھا بلکہ کسی اور کا نام لے لینا. تو جو کچھ تابعین ہیں تو ان کے نزدیک وہ جائز ہوگا، ان کے نزدیک وہ جائز ہوگا، جبکہ جمہور صحابہ اور تابعین کا مذہب کیا ہے کہ ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں ہم نے آخری بات جو پچھلی کلاس میں کری تھی تو وہ یہ تھی کہ اگر آپ اس مسلک پہ عمل کرنے والے ہیں جو کہ تابعین کا مسلک ہے اس میں، تو پھر آپ کسی مجتہد کے قول پہ عمل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے اس کے اندر. لیکن اگر آپ جو ہے وہ جمہور صحابہ و تابعین کے مسلک کے اوپر ہیں جو کہ ایکچوئل اہل سنہ و جماعت کا مسلک ہے، तो अब यहाँ पर तो रहते हुए फिर ये नहीं होगा कि बस जाहिल ईसाई और जाहिल जो है वो यहूदी का जबीहा जो है वो भी आप अपने लिए हलाल समझना शुरू कर दें। तो इस तरह से जो है वो एक्सेप्शन लेना या एग्जेम्पशन लेना जो है ना, ये फिर झूठे खुदा वाला मसला उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये सारी बातें पिछली क्लास में हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि फरमाते हैं कि हासिल कलाम ये है, यानी इन सारी डिस्कशन, इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन, कि सहाबा व ताबईन और असलाफ उम्मत का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि अहले किताब का असल मजहब जमाने नुजूल कुरान में भी यही था कि जिस जानवर पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए या कसदन अल्लाह का नाम छोड़ दिया जाए वो हराम है, जानबूझ के छोड़ दिया जाए। यानी उसको याद हो कि अल्लाह का नाम लेना चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो जानबूझ कर छोड़े कि नहीं, मैं नहीं लूंगा अल्लाह का नाम। ठीक है, तो ये हराम, ये ईसाइयों के नजदीक भी यहूदियों के नजदीक भी ये हराम है, उस वक्त भी हराम था और आज भी जो है ना वो हराम ही है। ठीक है, इसी तरह निकाह की हिल्लत और हुरमत में भी अहले किताब का असल मजहब मौजूदा जमाने तक अक्सर चीजों में इस्लामी शरीयत के मुताबिक है, उसके खिलाफ जो कुछ अहले किताब में पाया गया वो जाहिल आवाम के अगलात हैं, यानी गलतियां हैं जाहिल आवाम की, उनका मजहब नहीं है, उनका मजहब नहीं है। ठीक है, आज भी रोमन कैथोलिक्स हो या जो है वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हो, बाकी का हमें नहीं पता भाई, इतना ही पता चल गया बहुत बड़ी बात है, रोमन कैथोलिक्स हैं जो कि असल क्रिश्चियनिटी यही समझी जाती है कैथोलिसिज्म, तो उनके यहाँ भी और इवन जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स भी हैं उनके यहाँ भी ईजाब व कबूल। ठीक है, ईजाब व कबूल जो है ना ये म्यूचुअल कंसेंट को, अंग्रेजी में इसको म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं कि ब्राइड का भी कंसेंट हो और ब्राइड ग्रूम का भी कंसेंट। ठीक है, इसी को तो हमारे यहाँ ईजाब व कबूल कहा जाता है, ये जो कबूल कबूल है कहते हैं, तो यही तो होता है। तो फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, उनके यहाँ भी लिटरली दो यानी विटनेसेस चाहिए, ठीक है, जो कि अपनी शऊर की एज को पहुंचे, तो दो विटनेसेस लिटरली लिखा हुआ है कि दो विटनेसेस उनके यहाँ भी चाहिए। ठीक है, तो यही तो हमारे यहाँ भी निकाह की शर्त है, वही वहां पर भी निकाह की शर्त है। फिर उसके ऊपर एडिशनल चीजें जो है ना हमारे यहाँ भी जो है वो फिर मुस्तहब में आती हैं या दूसरे लेवल पे उनका हुक्म बनता है, जैसे मेहर का है हुक्म और जो है वो एलानिया तौर पर निकाह करने का हुक्म है, लेकिन बेर मिनिमम शर्त जो है वो दो गवाहों की है, हमारे यहाँ दो मर्द गवाह या एक मर्द और दो औरतें गवाह। ठीक है, और उनके यहाँ जो है वो टू विटनेसेस ओवर द एज ऑफ रीजन। ठीक है, बहरहाल तो यही फरमा रहे हैं कि निकाह की हिल्लत और हुरमत में भी असल मजहब उनका यही है, बाकी जाहिल अवाम उसके अंदर जो कुछ भी करें, वाउज लेना, जो वादे वादे करते हैं एक दूसरे के साथ कि हम हर हर हाल में तुम्हारे साथ देंगे और पुअर होंगे तो भी साथ रहेंगे, रिच होंगे तो भी साथ रहेंगे, बीमार होंगे तो भी साथ रहेंगे, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, ये उनका असल मजहब नहीं है, जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो और कोई चीज जो है ना वो फिर असल मजहब नहीं कहलाएगी ना, असल मजहब तो वही है जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, वरना तो असल मजहब नहीं होता वो। आगे कहते हैं मौजूदा तौरात व इंजील जो मुख्तलिफ जुबानों में छपी हुई मिलती हैं उनसे भी इसकी ताईद होती है। ठीक है, यानी आज के जमाने में जो मुख्तलिफ पब्लिशर्स की छापी हुई इंजील और तौरात होती हैं तो उनके कोट्स हजरत ने लिखे हैं, मुलाहिजा हो उनके मंदरजा ज़ैल अक़वाल, बाइबल के अहद नामे कदीम, शायद ओल्ड टेस्टमेंट को अहद नामे कदीम ही कहते हैं ना, तो ओल्ड टेस्टमेंट में जो मौजूदा जमाने की यहूद और नसारा दोनों के नजदीक मुसल्लम है, ओल्ड टेस्टमेंट को क्रिश्चियन और जूस दोनों मानते हैं, जबीहा के मुतालिक ये अहकाम है। नंबर वन, जो जानवर खुद ब खुद मर गया हो और जिसको दरिंदों ने फाड़ खाया हो, ठीक है, यानी उन्होंने हंड किया हो, फाड़ खाया, उनकी चर्बी और काम में लाओ तो लाओ, लेकिन तुम उसे किसी हाल में खाना नहीं। ठीक है, दूसरे कामों के लिए तुम उन जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो खुद बखुद मर गया हो या जिसको दरिंदों ने फाड़ खाया हो। नंबर टू, पर गोश्त को तो अपने सब फाटकों, पुर गोश्त को, गालिबन पुर गोश्त मतलब है यहाँ पे, या पर पिछला कोई सेंटेंस चल रहा था और उसको पर से जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू किया है, जो भी है कि गोश्त को तो अपने सब फाटकों के अंदर अपने दिल की रग़बत और खुदावंद अपने दी हुई बरकत के मुवाफिक ज़बह करके खा सकेगा। खुदावंद से इनकी मुराद जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदावंद कह देते हैं, तो वो अपने दबा करके खा सकेगा, लेकिन तुम खून को बिल्कुल ना खाना, ठीक है। गोश्त तो तुम खा सकते हो, यहाँ पर गोश्त और खून का मवाजना करके बता रहे हैं, खून को तुम बिल्कुल ना खाना, तो हमारे यहाँ भी खून को ना खाना। फिर तीसरी बात कि तुम बुतों की, अच्छा ये मुख्तलिफ जो है वो इनके बाइबल्स के नाम हैं, अहबारे वर्स नंबर 24, फिर इस्तिसना 12 से लेके 15 तक जो वर्स है उसके अंदर, तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त और लहू और गला घोटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज करो, ठीक है। बुतों की कुर्बानी वही जो आस्थानों आस्थानों वगैरह के ऊपर कुर्बान किया गया हो, तो हमारे यहाँ भी वो हराम है, ठीक है। लहू भी हराम है, गला घोटे हुए जानवर वो भी हराम है। नंबर 4, ईसाइयों का सबसे बड़ा पेशवा पोलिस क्रेंथियोन के नाम पहले खत में लिखता है कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ठीक है। यानी ये क्रिश्चियन जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो अब ये गैर कौम की जो बात कर रहे हैं तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये ज्यूस की बात नहीं कर रहे। और मुस्लिम जो है वो तो बाद में आए दुनिया के अंदर, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये यानी पेगन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के बुतों की पूजा, तो कोई आग की पूजा, तो कोई किसी चीज की पूजा, तो उनके बारे में कह रहा है कि ये शयातीन के लिए कुर्बानी करती है ना कि खुदा के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो, तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते, ठीक है ना। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो अल्लाह के बन के रहो या शैतान के बन के रहो, दोनों एक साथ नहीं बन सकते हो। तो दीन इस्लाम यही है, ठीक है। पहले जो है वो भी दीन इस्लाम था, बाद में उन्होंने उसको तब्दील कर दिया, लेकिन बुनियाद जो है वो प्रीटी मच यही चीज बनती है कि खुदावंद के प्यादे और यानी शिरकत जो है ना वो नहीं कर सकते। अब ईसा अलैहि सलाम को तो उन्होंने खुदावंद का बेटा बना लिया ना, ठीक है, तो वो तो फिर वो उनके हिसाब से तो शिरकत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे शयातीन हैं या बुत हैं उनको तो वो भी अल्लाह ताला का शरीक ही कहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये उनके लिए, उनके साथ तुम नहीं अल्लाह ताला को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 5, किताब आमाल हवारीजीन, आमाल हवारीजीन में है कि हमने ये फैसला करके लिखा था कि वो सिर्फ बुतों की कुर्बानी के गोश्त से और लहू और गला घोटे हुए जानवरों और हरामकारी से अपने आप को बचाए रखें, ठीक है। तो ये आमाल, किसी बाइबल का नाम जो है वो आमाल है, 21 to 25। तो कहते हैं कि ये तौरात और इंजील की वो तस्रीहात हैं जो आजकल की बाइबल सोसाइटियों ने छापी हुई है, जिनमें सैकड़ों तहरीफात व तरमीमात के बाद भी बेईन ही कुरान करीम के अहकाम के मुताबिक ये चीजें बाकी, ठीक है। कुरान करीम की आयत ये है, यही आयत नंबर 5 जिसकी हम सारी की सारी तफसीर पढ़ रहे हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, सॉरी आयत नंबर 3 जिसकी आप पहले हम पढ़ चुके हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनखनक़तु खनक़तु वल्मौकूदतु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकला सबुहु इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी, तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार यानी जो खुद से मर गया हो, और खून और खिंजीर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा और किसी का नाम पुकारा गया हो, और गला घोटा हुआ, और चोट खाकर मरा हुआ, और गिर कर मरा हुआ, और सींग खाकर मरा हुआ, और जिसे दरिंदे ने खाया हो, ठीक। जैसे ऊपर पढ़ा था ना अहबारे की रिवायत कि जिसको दरिंदों ने फाड़ा हो, इल्ला ये कि तुमने उसको पाक कर लिया, यानी अभी वो मरा नहीं था कि तुमने उसको जबाह करके पाक कर लिया, और वो जानवर जो बुतों के नाम पर जबाह किया जाए। तो इस आयत ने मैता यानी खुद मरा हुआ जानवर और खून और खिंजीर का गोश्त और जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो और गला घोटा हुआ जानवर और चोट से मारा या ऊंची जगह से गिरकर मरा हुआ या सींगों की चोट से मारा हुआ और जिसको दरिंदों ने फाड़ा हो, सब हराम करार दिए हैं, ठीक है। इस एक आयत, आयत नंबर 3 के अंदर ही इन सब को कैटेगरीज को जो है वो हराम करार दिया गया है। तौरात इंजील की मजकूरा तस्रीहात में भी लहम खिंजीर के अलावा तकरीबन सभी को हराम करार दिया है, सिर्फ चोट से या ऊंची जगह से गिरकर सींगों से मरने वाले जानवर की तफसील अगरचे मजकूर नहीं है, मगर वो सब तकरीबन खुद मरे हुए या गला घोट कर मारे हुए के हुक्म में दाखिल है, ठीक है। तो कुरान मजीद में ये दो एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी लिखी हुई हैं, लेकिन बाइबल में ये मौजूद नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर जो मौजूद है उसमें ये भी दाखिल हो सकती है बड़ी आसानी के साथ, खुद मरे हुए या गला घोट कर मारे हुए, तो बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है। बहरहाल, तो उम्मीद है कि ये तो समझ में आई गया होगा आपके, या नहीं भी आया तो एक दफा पढ़ लेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई इतनी तफसील बयान करने की जरूरत नहीं। इसी तरह कुरान करीम ने ज़बीहा पर अल्लाह के नाम लेने की ताकीद फरमाई है, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाहि अलैह, और जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसको हराम किया है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैह। ठीक है, तो कुरान मजीद में तस्रीहन हुक्म किसका है, जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसको खाओ, और जिस पर नाम ना लिया गया हो उसको मत खाओ, ला ताकुलू मत खाओ। ठीक है, बाइबल में किताब इस्तिसना की इबारत मजकूर नंबर 2 से भी उसकी ताकीद मफहूम होती है कि जानवर को अल्लाह के नाम से ज़बह किया जाए। इसी तरह निकाह के मुआमलात भी अहले किताब का मजहब अक्सर चीज़ों में शरीयत इस्लाम के मुताबिक है, जैसे पीछे बात हुई कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में भी और रोमन कैथोलिक्स के अंदर भी इसी तरीके से इजाब कबूल है, और जो है वो गवाह गवाहों की मौजूदगी शर्त है। मुलाहिजा हो अहबार 18:6-19, जिसमें एक तवील फहरस्त मुहर्रमात की दी गई है, और जिनमें बेशतर वही हैं जिनको कुरान मजीद ने हराम किया है, यहाँ तक कि जमा बैन उफ्तैन उफ्तैन यानी दो बहनों को एक साथ निकाह में जमा करने की हुर्मत और हालत हैज में सोहबत का हराम होना भी उसमें मुसरह या मुसरह है, सराहत के साथ उसके अंदर जिक्र है ये चीज भी, जो कि हमारे यहाँ भी हराम है उनके यहाँ भी हराम है। नीज बाइबल में उस इसकी भी तस्री है कि बुत परस्त और मुशरिक अकवाम से निकाह जायज नहीं है। मौजूदा तौरात के अल्फाज ये हैं, यानी 20th सेंचुरी के अंदर जो तौरात के नुस्खे अवेलेबल है ना, उनके अल्फाज कि तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, मुशरिकीन के साथ तो किसी किस्म की शादी ब्याह जायज नहीं है ना, क्योंकि वो मेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। ठीक है, यानी जिससे शादी करोगे ना तुम अपने बच्चे की, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, तो उसका जो स्पाउस होगा या होगी तो वो, यानी ये कहते थे ना अपने आप को, खुदा का बेटा, नहनु अबनाउल्लाही व आबाउहुम, ठीक है, या नहनु अबनाउल्लाही तो कहते थे ना, तो अपने आप को अल्लाह का बेटा कहते थे। बेटा से मुराद ये नहीं कि वाकई बेटा, बेटा तो वो एक ही को कहते थे, अपने बेटा से यहाँ पे मुराद होती है कि जी हम तो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे। ठीक है, तो यहाँ पर मुराद यही है कि वो अल्लाह ताला के जो पसंदीदा बंदे हैं ना, उनको फिर अल्लाह ताला की पैरवी से बरगुश्ता कर दे, हटा देंगे और दूसरे माबूदों की पैरवी में लगा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बाइबल की जो है ना मुख्तलिफ इबारात बता करके यही प्रूफ किया है कि भाई जो हिकमत है अल्लाह ताला ने जो अहले किताब के जबीये को या उनके औरतों से निकाह करने को मुसलमानों के लिए जायज करार दिया, तो वो यही है कि उनका जो तरीका है ना वो सेम है शरीयत इस्लामिया के अंदर भी, और जो पिछली शरीयतें थी उसमें, बाकी चीजें चेंज होने के बावजूद ये चीजें उन्होंने चेंज नहीं करी। अब खुलासा कराम इसका क्या हुआ, वो ये है कि कुरान में अहले किताब के जबाइह और उनकी औरतों से निकाह को हलाल और दूसरे कुफार के जबाए और निसा को हराम करार देने की वजह यही है, यानी हिकमत यही है कि इन दोनों मसलों में अहले किताब का असल मजहब आज तक भी इस्लामी कानून के मुताबिक है, और जो कुछ इसके खिलाफ उनके अवाम में पाया जाता है वो जाहिलों के अगलात हैं। ठीक है, जो उनके मजहब से भी नावाकिफ हैं तो उनकी गलतियां हैं, उनका मजहब नहीं है। ठीक है, यानी जाहिल का जो अमल होता है ना वो मजहब नहीं बन जाता, ये डेमोक्रेसी नहीं चल रही है यहाँ पर। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी ये होती है कि अगर बड़ी तादाद में लोग जो है ना वो किसी एक बात में मुत्तफिक हो जाएं, चाहे वो कोई भी बात हो, तो वही लॉ बन जाती है। राइट, ये है डेमोक्रेसी। दीन चाहे वो ईसाइयत वाला दीन हो, चाहे यहूदियत वाला दीन हो, चाहे इस्लाम वाला दीन हो, इसके अंदर ऊपर से लॉ आती है, अल्लाह से लॉ आती है। ठीक है, लॉ LAW वाली लॉ। ठीक है, अल्लाह से कानून आता है, नबी जो है वो बताते हैं उस कानून को, और उलमाए कराम जो है वो समझाते हैं उसका। अल्लाह कानून बनाता है, नबी कानून बताता है, और उलमा कानून समझाते हैं, ठीक है ना। और जहां पे तसरीहन कोई कानून मौजूद ना हो तो वहां पर इजमा और कयास के जरिए से उसको अप्लाई करते हैं। बस ये है तरीका कानून का। ये कोई थोड़ी है कि हेड काउंटिंग करके जो है वो आपने कोई कानून बना लिया। वो हेड भी जो है वो कौन से वाले हेड्स, जुहला के हेड्स नहीं, उलमा के हेड्स की काउंटिंग तो होती है, यानी इल्म वाले, समझ वाले, शऊर वाले, फिका वाले, उनकी तो हेड काउंटिंग है दीन के अंदर, हर दीन के अंदर है, ठीक है। इसी को तो इजमाए उलमाए उम्मत कहा जाता है। लेकिन जुहला की हेड काउंटिंग नहीं, ठीक है। ये तो शैतान का बनाया हुआ निजाम है जो कि हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया, और हमने उसको पता नहीं क्या क्या नाम दे करके जो है वो कबूल भी कर लिया है, जिसको कि डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी वो क्या है, वो अब्राहम लिंकन वाली, कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, हु आर द पीपल, नहीं पीपल का दरख्त, नहीं, द पीपल मीन्स जुहला, ठीक है। तो जाहिलों को बेवकूफ बनाने के लिए इस उनके चीजें मशहूर करी हुई है, करते वो भी वही है जो उलमा कहते हैं उनके। तो हमें बेवकूफ बनाने के लिए या अपने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें जो उन्होंने पट्टी पढ़ाई हुई है खाली। अच्छा, तो जुहला के अगलात है ना, उनका भी ये मजहब नहीं है, मजहब तो ऊपर से आता है भाई। इसीलिए जमहूर सहाबा व ताबईन और आइम्मा मुज्तहिदीन के नजदीक सूरह बकरा, सूरह अनआम और माईदा की तमाम आयात में कोई तजाद या नस या तख्सीस नहीं है, ठीक है। कि सूरह बकरा और सूरह माईदा, सॉरी, सूरह बकरा और सूरह अनआम के अंदर जो आयात है ना कि भाई अल्लाह ताला का नाम जिसपे लिया गया हो उसको खाओ और जिसपे अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया उसको ना खाओ, तो सूरह माईदा की आयत के अंदर जो है ना कि अहले किताब का तुम खा सकते हो, तो इट्स नॉट एन एग्जेम्पशन, इट्स नॉट एन एग्जेम्पशन, ये कोई तख्सीस नहीं है। तख्सीस को अंग्रेजी में एग्जेम्पशन कहा जाएगा, ठीक है। और नस का मतलब होगा एब्रोगेशन, कि भाई कुरान की एक आयत जो है वो किसी दूसरी आयत को एब्रोगेट कर देती है ना, कैंसल आउट कर देती है, ऐसा हुआ है, ऐसी आयात मौजूद है। यहां पे ये मामला नहीं, यहाँ पे नस का कोई मामला नहीं हो रहा है। तजाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह की दो बातों के अंदर तजाद हो जाए, तजाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन नस का और तख्सीस का सवाल पैदा होता है, लेकिन यहाँ पैदा नहीं होता, दूसरी जगहों पे होता है, यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो वही खुलासे कलाम इन्होंने फरमाया। तो ये तो जमहूर का मजहब का खुलासे कलाम हुआ ना। अब जो है वो जो गैर जमहूर के मजहब का खुलासे कलाम, तो उसके बारे में आगे फरमा रहे हैं कि जिन उलमा व ताबईन ने गलतकार आवाम के अमल को, यानी जाहिल ईसाई, जाहिल यहूदी के अमल को भी तबअन अहले किताब के हुक्म में शामिल रखा, ठीक है, कि भाई बेशक वो जाहिल है, उन्होंने जानबूझ के अल्लाह ताला का नाम छोड़ दिया या उन्होंने किसी दूसरे का नाम जो है वो ले लिया, ठीक है, तो अब वो अपने उलमा के ताबे हैं ना, बेशक जाहिल हैं लेकिन उलमा के ताबे हैं, तो इस वजह से उनका जो है ना वो जबीहा हलाल ही होगा, ठीक है। ये उलमा और ताबीन, यानी ताबीन के जो उलमा हैं तो उनका ये मजहब है। और आयात बकरा, और उन्होंने मजीद क्या कहा कि आयात बकरा व अनआम में नस या तख्सीस का कौल इख्तियार किया, ठीक है, कि भाई सूरह माईदा की जो आयत है ना ये तो नस और तख्सीस कर रही है उसकी। तो उसकी भी बुनियाद यही है कि नसारा जिनका एक कौल ये है कि इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, यानी अल्लाह तो ईसा इब्न मरियम ही है, नाऊज़ु बिल्लाह, ठीक है, कुरान मजीद खुद बता रहा है, ये कुरान मजीद की आयत है, इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, यानी कुरान मजीद ये नहीं कह रहा, कुरान मजीद ये बता रहा है कि ईसाई ये कहते हैं कि इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। तो ये लोग अगर अल्लाह का नाम भी लें तो इससे मुराद ईसा इब्न मरियम ही रहते हैं, इसलिए उनके जबीहा में अल्लाह का नाम लेना या मसीह का नाम लेना बराबर हो गया। इस बिना पर इन हजरात ताबईन ने ज़बाइह अहले किताब में इसकी इजाजत दे दी है। इन हजरात ने ताब यानी इन हजरात ताबईन ने जो अहले किताब के ज़बीहा होते हैं ना, तो उसके अंदर फिर इसकी इजाजत दे दी कि भाई अब जाहिल अवाम जो है ना अगर अल्लाह का नाम नहीं भी लेती है ना, किसी और का नाम ले लेती है तो वो भी जायज ही है, ठीक है, तो वो भी जायज ही है, क्योंकि वो अल्लाह इज इक्वल टू ईसा, ईसा इज इक्वल टू अल्लाह, ठीक है। और कहते हैं कि भाई कुरान मजीद यही बता रहे हैं कि उनके नजदीक ऐसा ही है, तो इस वजह से जायज होगा। लेकिन जमहूर ने अपने दलायल दे करके इसको डिसप्रूव किया, वो हम दलायल पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, इब्ने अरबी ने अहकाम कुरान में इस बुनियाद की वजाहत फरमाई है। अहकाम इब्ने अरबी पेज 229 जिल्द नंबर 1। मगर जमहूर उम्मत ने उसको कबूल नहीं किया, ठीक है। मेजोरिटी उलमा सहाबा और अइमा मुज्तहिदीन, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक वगैरह, इन्होंने इसको कबूल नहीं किया। जैसा कि बहवाले तफसीर इबन कसीर और तफसीर बहर मुफीद अभी गुजर चुका है, जो हमने वो हवाले पढ़ लिए थे। और तफसीर मजहरे में अफवाल मुख्तलिफा नकल करने के बाद लिखा है कि सही और मुख्तार हमारे नज़दीक वो पहला ही कौल है। हमारे नज़दीक सही और हमारे नज़दीक मुख्तार, यानी जिसको हमने इख्तियार किया है, वो वही पहला कौल है। यानी कि अहले किताब के जबाएह जिन पर कसदन अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया हो या गैर अल्लाह के नाम पर ज़बह किए गए हों, वो हलाल नहीं है। अगर यकीनी तौर पर इसका इल्म हो जाए कि उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया या गैर अल्लाह का लिया है, या अहले किताब की आम आदत ये हो जाए, जिन बुजुर्गों ने अरब के नसारा के जबाए को मना किया है, उनके कौल का मकसद भी यही है, ठीक है। यानी अगर यकीनी तौर पर पता चल जाए कि इसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया है या गैर अल्लाह का नाम लिया गया है, या ठीक है, आज पर आप कहेंगे ना कि अमेरिका जाते हैं तो हमें यकीनी तौर पर तो नहीं पता होता कि फलाना जो गोश्त मैकडोनल्ड्स में मिल रहा है या KFC में मिल रहा है, उसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम लिया गया है या नहीं लिया गया है या कसदन छोड़ा गया, हमें तो नहीं पता होता। तो उसका जवाब जो है वो इस तीसरे पॉसिबिलिटी के अंदर मौजूद है कि अगर अहले किताब की आम आदत ये हो जाए, ठीक है, जैसे कि अंदर क्रिश जैसे कि क्रिश्चियंस के अंदर जो है वो आम आदत ये हो गई है, और अमेरिका यूरोप के अंदर जो है वो क्रिश्चियनिटी, वैसे भी यूरोप में तो शायद पता नहीं 10% रह गई होगी और अमेरिका में जो है वो 50-60% रह गई है, तो बाकी 40% जो है वो तो, या 40 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, ये वो तो फिर नॉन क्रिश्चियंस ही हो गए ना। तो वैसे भी अमेरिका जो है वो क्रिश्चियन कंट्री जो है वो कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया से इमिग्रेशन अमेरिका के अंदर होती है। तो अल्लाह भला करे ट्रम्प साहब का, क्या उन्होंने इमिग्रेशन वालों को ब्रेकें लगानी शुरू करी है, वरना तो अमेरिका बना ही सारा का सारा इमिग्रेशन पर है, ठीक है। हिंदू भी माइग्रेट कर रहे हैं, तो बुद्धिस्ट भी माइग्रेट कर रहे हैं, तो पता नहीं किस किस मतलब के लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं और ईसाई भी कर रहे हैं और गैर ईसाई भी कर रहे हैं, और अमेरिका तो बना ही पूरा का पूरा खिचड़ी के तरीके से है, ठीक है। तो उसको ऊपर तो ये कहा जाएगा ना कि अहले किताब की आम आदत ये हो जाए, यानी वहां की आम आदत यही है कि जी अल्लाह का नाम है ना अब नहीं दिया जाता। तो जिन बुजुर्गों ने अरब के नसारा के जबाएह को मना किया है, उनके कौल का मकसद भी यही है कि उनकी आम आदत ही हो गई थी। इसी तरह हजरत अली ने जो ये फरमाया कि नसारा बनी तगलब या तोलब के जबाएह खाना जायज नहीं, क्योंकि उन्होंने मजहब नसरानियत में से बजुज शराब नोशी के और कुछ भी नहीं लिया, इसका महमूल भी यही है। हजरत अली को यह साबित हुआ होगा कि बनी तगलब अपने जबाएह पर अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं या फिर गैर अल्लाह का नाम लेते हैं, बल्कि अल्लाह ने उसको हराम करार दे दिया, ठीक है, क्योंकि उन तक यही वाली खबर पहुंची थी। बस यही हुक्म अजमी नसारा का भी है कि अगर इनकी आदत यही हो जाए कि आमतौर पर गैर अल्लाह के नाम पर दबा करते हैं, तो उनका जबिया खाना जायज नहीं होगा। और इसमें शक नहीं कि आजकल के नसारा तो जबा ही नहीं करते, बल्कि आम तौर पर चोट मारकर हलाक करते हैं, इसलिए उनका जबीहा हलाल नहीं है, ठीक है। वो तो दरमियान में से काट के यानी जानवर मारते हैं, या जो है वो बंदूक की गोली से जो है वो जानवर मारते हैं, ठीक है। इस तरह की हरकतें जो है वो अमेरिका के अंदर होती हैं। बहुत ही पहले की बात है, बिल्कुल नए नए जब अमेरिका गए थे तो मैं सुना था कि बाकायदा दो तीन किताबों के नाम, मैंने शायद उनमें से एक खरीद के भी रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, कि व्हाट इज अमेरिका ईटिंग, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का शायद उसका नाम था, या व्हाट डज अमेरिका ईट। तो उसके अंदर जो है ना ये सारे के सारे बहुत तफसील के साथ बंदे ने रिसर्च करके जो है वो अपनी किताब लिखी थी उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें थी कि आपको जो है ना वो, आप अगर पढ़ लें उस किताब को तो आप करीब भी ना जाए उनके खाने के, इस किस्म की चीजें थी उसमें। खैर, तो आजकल तो फिर ये वाला मामला चल रहा है ना। ये तफसीली बहस यहाँ इसलिए नकल की गई कि इस मकाम पर मिस्र के मशहूर आलिम, अब ये बड़ी एक रेलेवेंट कस्म की बात है जो कि हमारे लिए बहुत अहम है, कि मिस्र के मशहूर आलिम मुफ्ती अब्दा से एक सख्त लग्जश हो गई है। मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अपने जमाने के मुफ्ती अब्दा के बारे में लिख रहे हैं कि उनसे बड़ी सख्त लग्जश हो गई है, जिसके गलत और किताब सुन्नत और जमहूर उम्मत के खिलाफ होने में कोई शको शुबा नहीं है। तो अपने जमाने के एक बड़े मशहूर आलिम का जिक्र कर रहे हैं अपनी किताब के अंदर, उसे शर्मा शर्मी नहीं कर रहे कि नहीं शर्म आती है किसी आलिम का नाम जिक्र करते हुए गलत तरीके से, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो जिक्र किया है मौसूफ से, आज इनके बेटे ने भी इसी तरीके से एक बहुत बड़े जो है ना वो दौरे हाजिर के आलिम का अपने मजमून के अंदर जिक्र किया है। अभी बिल्कुल अगस्त के जो अलबलाग का मैगजीन इन्होंने निकाला है अपनी दारुल उलूम कराची से, तो उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह की एक बात करी है, लेकिन जबीहे से भी बढ़ करके वो मसला बयान किया उसके अंदर। बहरहाल, तो ये तो अपने जमाने के मुफ्ती अब्दा के बारे में बयान कर रहे हैं कि मौसूफ से तफसीर अलमनार में इस जगह दोहरी गलती हुई। अव्वल तो अहले किताब के मफहूम में दुनिया के कुफार, मजूस, हिंदू, सिख वगैरह सबको दाखिल करके इतना आम कर दिया है कि पूरे कुरान में जो कुफार अहले किताब और गैर अहले किताब की तकसीम व तफरीक की गई है वो बिल्कुल बेमानी और बेहकीकत हो जाती है। ठीक है, यानी मुफ्ती अब्दा साहब ने जो है ना वो सबको ही अहले किताब में शामिल कर दिया। जैसे कुछ लोग जो है वो हिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो वो जो है ना वो ये है कि भाई हिंदू की किताब जो है वो भी किसी जमाने में आसमानी किताब होती होगी, फिर उसको इतना ज्यादा बिगाड़ दिया, और भाई ये सब ठीक है होती होगी रामायण आसमानी किताब, लेकिन इस रामायण का जो है वो कुरान और हदीस के अंदर कहीं जिक्र नहीं है, तो हम उनको अहले किताब में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन मुफ्ती अब्दा साहब ने यही हरकत करी कि उन्होंने जो है ना मजूस, हिंदू, सिख वगैरह सबको ही अहले किताब में दाखिल कर लिया। ठीक है, यानी कुरानी अहले किताब के अंदर दाखिल कर लिया, कुरान की इस्तलाह वाले अहले किताब में दाखिल कर लिया। तो ये बिल्कुल बेमानी और बेहकीकत बात है, जिससे कि फिर खत्म ही हो जाता है सारा मामला, मुश्रिकीन और अहले किताब के दरमियान कोई फर्क ही नहीं रहता। और दूसरी गलती इससे बड़ी ये हुई, इससे भी बड़ी दूसरी गलती, कि तमाम अहले किताब के मफहूम में अहले किताब के हर खाने को बिना किसी शर्त के हलाल कर दिया, ख्वाह वो जानवर को ज़बह करें या ना करें, और उस पर अल्लाह का नाम लें या ना लें, हर हाल में वो जानवर को जिस तरह खाते हैं उसको मुसलमानों के लिए हलाल कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो उन्होंने हरकत करी है ना, यहां पर वो झूठा खुदा और सच्चा खुदा वाला मसला नहीं चल रहा कि हाँ भाई अगर आप मुफ्ती अब्दा को फॉलो करते हैं तो अब जो है ना वो, अगर आप मुफ्ती अब्दा को फॉलो करते हैं तो अब जो है वो आप अमेरिका जाके मैकडोनल्ड से भी खा सकते हैं और केएफसी भी से भी खा सकते हैं, आपके रूह पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, बल्कि क्यों उनको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यानी बिल्कुल ही बेदलील बात करी, हद से ज्यादा बेदलील बात करी। वो भाई कुछ दलील होनी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि किसी का टाइटल जो है मुफ्ती लगा हुआ है तो अब वो बिल्कुल ही उठ करके कोई ख्वाब की बात बयान करना शुरू कर दे, तो भाई चूंकि मुफ्ती साहब ख्वाब ख्वाब से जो है वो शरीयत का कोई उसूल निकाल रहे हैं, तो इस वजह से चूंकि मुफ्ती साहब निकाल रहे हैं इस वजह से वो अब जायज हो गया, और उसके ऊपर अमल करने वाले के रूह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, तो वो झूठे खुदा सच्चे खुदा वाली बहस के अंदर इसको शामिल नहीं किया जा सकता, इस किस्म की यानी बिल्कुल ही जो है ना वो आउटरेजियस किस्म की आप कोई बात कर दें तो अब आपके किसी सनद और सर्टिफिकेशन या टाइटल की वजह से उसको जायज नहीं करार दिया जाएगा। तो हजरत फिर आगे मजीद इसकी तफसील लिखते हैं कि जिस वक्त उनका ये फतवा मिस्र में शाया हुआ, उस वक्त खुद मिस्र के और दुनिया के तमाम अकाबिर उलमा ने ठीक है सीनियर उलमा ने उसको गलत करार दिया। इस पर बहुत से मकाले और रिसाले लिखे गए, मुफ्ती अब्दा को ओहदे फतवा से माजूल करने के मुतालबात हर तरफ से उठे। ठीक है, उधर मुफ्ती साहब मौसूफ के शागिर्दों और कुछ मगरब जदा यूरोपियन मुआशरे के दिलदादा लोगों ने बहसें चलाई, क्योंकि ये फतवा उनकी राह की तमाम मुश्किल का हल था कि यूरोप के यहूदों नसारा बल्कि देहरियों का हर खाना उनके लिए हलाल हो गया था, है ना, कितना मजा हो गया, कितना जबरदस्त कि भाई अब आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ कर जो चीज खाना चाहें खाएं। ठीक है,
वो लोग तो जाहिर है फिर उसके ऊपर बगले बजाना शुरू हो गए और जो है उसके ऊपर खूब उन्होंने ढोल पीटना शुरू किया क्या। और ये तो बिल्कुल जबरदस्त, ये तो बड़े जबरदस्त काम हो गया ना, हर किस्म का खाना अब जो है वो जायज हो गया। ठीक है, तो पता नहीं फिर कुरान मजीद की आयत क्या 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 करोगे फिर उसके बाद, इसमें खामखई नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला खामखई अल्लाह ताला ने जो है वो तय्यबात और तय्यबात ये सारी बातें करी। जब सब कुछ ही तुमने हलाल कर लिया तो फिर आयत तो इरेलीवेंट हो गया बिल्कुल ही। ठीक है, बहरहाल ये तो एक अकली दलील है, लेकिन नकली दलील है कि इसके ऊपर माशाल्लाह उलमा ने अच्छी दी। लेकिन इस्लाम का ये भी मुआजजा है कि खिलाफ शरीयत काम हुआ कितने ही बड़े आलिम से क्यों ना हो जाए, आम मुसलमानों के कुलूब इससे कभी मुतमईन नहीं। इस मामले में भी यही, और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसको गुमराही करार दिया। पूरी दुनिया के मुसलमानों में वो लोग शामिल नहीं थे जिनको के हजरत ने ऊपर मगरब ज़दा यूरोपियन मुआशरे के दिलदादा लोग, उन्होंने इसको गलत नहीं करार दिया। ठीक है, तो पूरी दुनिया के मुसलमान फिर कैसे कह रहे हैं, लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर ने उसको गलत करार दिया और अक्सर के ऊपर ही कुल का जो है वो इतलाक कर दिया जाता है। तो इस मामले में यही हुआ, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसको गुमराही करार दिया और उस वक्त ही मामला दब कर रह गया। मगर जमाने हाल के मुल्हिदीन जिनका मकसद ही ये है कि इस्लाम का नया एडिशन तैयार किया जाए, नया एडिशन तैयार किया जाए, ठीक है ना, इस्लाम का नया एडिशन, इसके ऊपर जो है वो ये काम चल रहा है। कब से चल रहा है भाई, जल्दी से अगर आप बता दें, इस्लाम का नया एडिशन जो है उस पे काम जो है वो कब से चल रहा है, और दूसरा हिस्सा इस सवाल का ये होगा कि कब जो है वो इसके अंदर जोरों शोर शुरू हो गया है और कब जो है वो ये टर्बो बूस्ट पर आ गया है। तीन सवाल हो गए एकदम से आपके आपके लिए, ठीक है, आपके लिए तीन सवाल हो गए। सवाल तो पहले एक बन रहा था, अब तीन बन गए। तो कब ये शुरू हुआ, कब जो है वो जोर शोर के साथ ये आगे बढ़ा, और कब जो है ये टर्बो बूस्ट की बजाय हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर आगे बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो तीन सवाल हैं, आप दोनों के दोनों जो है वो एक ही जवाब दिए चल जा रहे हैं। टीवी सोशल मीडिया, ठीक है, तो और कोई, कब शुरू हुआ, कब जोर पकड़ा और कब सुपरसोनिक स्पीड पे। तो हमारी ये बचपने की टर्मिनोलॉजी है, शुरू कब हुआ, ब्रिटिश दौर से, समझ में नहीं आ रहा ना, आप कौन से वाले तीन में से कौन से वाले सवाल के जवाब दे रहे हैं। बिगिन हुआ अब्दुल्ला बिन सबा, माशाल्लाह, सुपरसोनिक स्पीड पर, अब एआई के जरिए से, चलिए माशाल्लाह एआई के जरिए से, ठीक है, चलिए ठीक है, टाइम भी तकरीबन खत्म हो गया क्लास का, बल्कि ये शुरू जो है ना ये तो हुआ अब्दुल्ला बिन सबा के, माशाल्लाह जबरदस्त जवाब दिया, अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने ये काम शुरू किया, ठीक है ना, जिसके बाद पे जो है वो रवाफिस का जो है वो फिरका बना, ठीक है, इस्लाम के नया एडिशन लाना। लेकिन जोरों शोर जो इसने पकड़ा है ना, ये पकड़ा है कलोनियलिज्म के टाइम पर, कलोनियल पावर्स ने जब पूरे इस्लामी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया ना, तब ये जोर शोर से जो है वो फैलना शुरू हुआ। ठीक है, इस काम में जोर शोर पैदा हो गया और हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक स्पीड से जो है ये लिटरली ये शुरू हुआ है 2010s में, 2010s में, ठीक है ना, सुपर स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर या हाइपरसोनिक स्पीड, अब शायद हाइपरसोनिक स्पीड अभी रहती है, अभी सुपरसोनिक पे चल रहा है। हाइपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो ये 2010 से आगे का जो दौर है ना ये सुपरसोनिक सोनिक स्पीड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया, सेलफोन और इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीजों के जरिए से 2010 के आगे नहीं, इंटरनेट तो शुरू हो गया था 1992 से या 1990 से तकरीबन ये इंटरनेट शुरू हो चुका था और इंटरनेट ने जोर पकड़ लिया था 2000 के अंदर, लेकिन लेकिन ये जो काम शुरू हुआ है ना, ये 2010 के बाद शुरू हुआ है। ठीक है, बहरहाल तो ये इस्लाम का नया एडिशन लाने की भरपूर जो है वो कोशिश हो रही है, और इस वक्त जो है वो आप देख रहे हैं सारी दुनिया में इंसानियत एक हो चुकी है। ठीक है ना, एक इंसानियत के नाम पर, और फलस्तीन के जुल्म के खिलाफ, फलस्तीन को जो है वो जिस तरह से जाहिर है जुल्म किया है उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जुल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस जुल्म का जिस तरह से ढंडोरा पीटा है, और जिस तरह से एक एक लम्हे लम्हे को जो है वो पूरी दुनिया को दिखाया है, ठीक है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया है, पूरे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह को दिखाया है। ठीक है, तो इससे जो है वो क्या हुआ है, पूरी इंसानियत इकट्ठी हो गई है, और ये जो पूरी इंसानियत इकट्ठी हो गई है ना, तो माशाल्लाह वैसे तो बड़ी अच्छी बात लगती है, इंसानियत इकट्ठी हो गई, लेकिन दरमियान में अकीदा जो है ना, अकीदा वो बिल्कुल मुंदमिल, बिल्कुल जो है वो गैर अहम से कम होते होते बिल्कुल जैसे कि नॉन अहम हो गया, बिल्कुल नॉन अहम हो गया। कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, फिल्में बन रही हैं किसी के नाम पे हो के ऊपर, अब यानी गोया के दीन जो है वो अब फलस्तीन का नाम, भाई दीन फलस्तीन का नाम नहीं है, फलस्तीन जो है वो मुसलमानों का एक जगह है, क़िबला अव्वल है, और हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और बहुत अजीम जुल्म हो रहा है, ये सब अपनी जगह पर बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दीन को है जो है वो छोड़ करके जो है वो उस इस इसको जो है वो आप दीन बना रहे, इसकी तो कहीं भी कोई भी नई चीज है ना ये। ठीक है, तो बिल्कुल ये वही नया एडिशन, ठीक है, जिसको कि अब्राहमिक रिलीजन बोले या आप यूनिवर्सल रिलीजन बोले, कोई यूनिवर्सल बोलता है, कोई अब्राहमिक बोलता है, तो वो ये है सुपरसोनिक दीन का नया एडिशन। तो फरमा रहे हैं कि जमाने हाल के मुल्हिदीन, जिनका मकसद ही ये है कि इस्लाम का नया एडिशन तैयार किया जाए कि जिसमें यूरोप की हर लघवियत खप जाए, ठीक है ना, अब जो है वो जो जुलूस होते हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, हर किस्म की उसके अंदर लघवियत जो है ना वो खप गई है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल नाउ। ठीक है, और नए जवानों की नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करे, हर यानी यूरोप की हर लघवियत खप जाए और नए जवानों की नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करे। उन्होंने फिर इस बहस को इस अंदाज से निकाला कि गोया वो खुद अपनी कोई तहकीक पेश कर रहे हैं, हालांकि वो सब नकल मुफ्ती अब्दा के मजकूरा मकाले की है। ठीक है, तो आज भी यही होता है कि कोई इसी किस्म का जो मुफ्ती होता है ना, उसने कोई ना कोई शोशा छोड़ा हुआ होता है, अमेरिका में बैठ के छोड़ा हो, या मिस्र में बैठ के छोड़ा हो, या पाकिस्तान में बैठ के छोड़ा हो, या इंडिया में बैठ के छोड़ा हो, उसको जो है ना लेकर के फिर वो अपने इस किस्म के अमल की जो है ना वो हुज्जत बना रहे होते हैं। हाँ जी, उन्होंने तो कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे करने से कुछ नहीं होता, राइट, मौसीकी से भी कुछ नहीं होता, और औरतों के साथ इख्तलात से भी कुछ नहीं होता, और जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ भी जो है वो भाईचारा और दोस्ती और यारी और हर चीज, और एज लॉन्ग एज कि आप जो है वो किसी को तकलीफ ना पहुंचा रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ तो वैसे भी नहीं होती होगी, है ना, बस किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाते हो। ठीक है, तो ये वाला जो है ना दीन, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुफ्ती साहब के कोई ना कोई फतवे की बुनियाद पर ये लेके चलते हैं, तो इसीलिए जरूरत हुई कि इस बहस को किसी कदर तफसील से लिखा। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह बकदरे जरूरत इसका बयान हो गया, और उसकी पूरी तफसील मेरे रिसाले इस्लामी जबीहा में है, वहां देखी जा सकती है। ठीक है, यानी ये जो हजरत ने सफा नंबर कहाँ से शुरू करी थी भाई, आयत जो थी वो तो 41 पर थी ना, 42 से मारिफ मसाइल शुरू हुए थे खाने के मौजू के ऊपर, और 59 के ऊपर जाकर के खत्म किया है इस मसले को, तो उसकी वजह ये थी। क्या वजह थी? मुफ्ती अब्दा साहब के फैलाए हुए इस मुगालता, जिसको के फिर मुल्हिदीन ने खूब उछाला, खूब उछाला। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, उन्होंने इस वजह से इतनी लंबी, यानी हम भी जो है ना वो एक एक तरह से वो यार कब तक पढ़ते रहेंगे इस वाली चीज को, और आप भी शायद परेशान हो गए होंगे कि इनकी खत्म ही नहीं होके दे रही, तो भाई कोई वजह थी इसकी, और वजह कितनी बड़ी वजह थी, जिसको कि हमारे नजदीक कितनी छोटी वजह लगती है, ठीक है, लेकिन जो इल्म वाले हैं और मारिफत वाले हैं और बसीरत वाले हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी वजह थी दीन का नया एडिशन लेकर के आना, दीन को को के अंदर जिद्दत पसंदी करना, दीन को जो है वो तब्दील करना, ठीक है, ये कितनी बड़ी वजह है, क्योंकि इसके बाद फिर दीन रहता नहीं अगर दीन की तब्दीली हो जाए, और जब दीन नहीं रहता तो ईमान खत्म हो जाता है, और जब ईमान खत्म हो जाता है तो फिर हमेशा हमेशा की जान, हमेशा हमेशा की जान, ठीक है। अब दूसरा मसला जो है फिर इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम अगली क्लास के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे, और उसमें फिर दूसरा बड़ा मसला शादी वादी वाला है ना, उसके बाद चल नहीं वो भी थोड़ा सा भी पढ़ने के बाद मजीद अगले पेज के ऊपर तीसरे जुमले यानी डिस्कशन शुरू होगी। हजरत जब ये आम मुसलमान इस फतेह को कबूल ना कर पाए तो फिर इतने बड़े मुफ्ती साहब ऐसी ऐसा गलती कैसे हो गया, क्या वजह बन क्या वजह बनी होगी, क्या वो गुमराह हो चुके थे, ये तो आप बता दें मुझे, नहीं पता उनके बारे में गुमराह हो चुके थे कि नहीं हो चुके, ठीक है, मैं उनको नहीं जानता भाई, मुफ्ती शफी साहब ने जो लिखा है वो हमारे लिए काफी है, ठीक है, बाकी मेरे ख्याल उनका तो इंतकाल हो चुका है, वो तो फिर आप अगले जान में पूछ लीजिए, पता नहीं पता वो मुझे, और इस किस्म का सवाल करने की भी हमें कोई शौक नहीं है ना हमें कोई जरूरत है इसकी, ठीक है। آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله